शांति। हम सभी के आगे ब्रह्मा बाप एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसा एग्जाम्पल जिसको कॉपी करने से सहज ही संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। निराकार परमात्मा का गायन भक्ति मार्ग में हम लोग अनेक गुणों और कर्तव्यों के द्वारा करते आए। शिव बाबा गुणों का भंडार है, शक्तियों की खान है, विशेषताओं की भरमार उसके पास है। परमात्मा पिता के साथ हमारे सर्व संबंध है। ये सारी महिमा हमने अनेक जन्मों तक परमात्मा की। भक्ति मार्ग में सिर्फ गायन करते थे, परंतु जब ज्ञान मार्ग में आए, बाबा के बने, तो साकार में निराकार को देखा। निराकार की जो जो विशेषताएं हैं, वो सब विशेषताएं प्रत्यक्ष देखने में आई, प्रत्यक्ष अनुभव करने में आई। जिस प्रकार हमें ये पता है कि आत्मा और शरीर, ये दोनों सत्ताएं अलग है, अलग होते हुए भी आप उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आत्मा है और शरीर नहीं है, ड्राइवर है मोटर नहीं है, तो ड्राइवर कुछ काम का नहीं रहता। शरीर है आत्मा नहीं है, तो शरीर भी कुछ काम का नहीं। जैसा दोनों अलग होते हुए भी हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार बाप और दादा, ये दोनों अथॉरिटी अलग होते हुए भी हम इनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों भी कंबाइंड है और इसकी अनुभूति हर क्षण हर पल हम बच्चों ने की है कि किस रीति से दोनों साथ में रहते हुए इतना बड़ा विश्व कल्याण का कार्य कितना सहज रीति से किया। शिव बाबा की महिमा परम अपार है, परंतु ब्रह्मा बाप की महिमा भी कम नहीं, क्योंकि वो सृष्टि का परम पिता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा ये मनुष्य सृष्टि का आदि पिता है, इसीलिए ये दोनों भी ऐसी अथॉरिटी है जिस इन दोनों अथॉरिटी के हम बच्चे हैं। और बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे तुम जिस रास्ते चल रहे हो, जिस लक्ष्य के ऊपर पहुंच रहे हो, वो चाड़ी बहुत ऊंची है। जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा जाता है, तो आप सभी को यह अनुभव है कि ट्रेन जो है उस एक इंजन से काम नहीं चलता है, उसको दो दो इंजन लगाए जाते। तो बाबा कहते थे, तुम बच्चों को इसीलिए ये दो इंजन लगे हुए हैं, बाप और दादा, ये तुम्हारी जीवन रूपी गाड़ी को लेकर के जाते हैं और ठिकाने के ऊपर पहुंचाते। तो बाबा बड़ी सिंपल भाषा में ये बातें हम बच्चों को समझाते थे। परंतु वो प्रैक्टिकल में फील होता था कि किस रीति से ये दो इंजन हमको सेफ रीति से ऊपर चढ़ा रहे हैं, हमारे सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं, हमारे लक्ष्य को भी सामने रखते हुए हमें वहां पर लेकर के जा रहे, जिसके कारण हमें चलना नहीं पड़ा, परंतु वो लेकर के जा रहा है क्योंकि हमारे को चलने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को गोदी में बिठा करके लेके जाता हूं, मैं तुम बच्चों को नैनों में बिठा करके लेके जाता हूं, मैं तुम बच्चों को कंधे के ऊपर बिठा के ले जाता हूं, क्योंकि हम बाबा के सिक्की लदे बच्चे हैं। और आप समझ सकते हैं किसी का बच्चा अगर दो चार दिन भी गुम हो जाता है उनकी हालत कितनी खराब होती है, और जब ये बच्चा मिलता है तो कितनी खुशी होती है। हम तो अपने बाप को 5000 बरस के बाद मिले हैं, तो आप समझ सकते हैं बाबा को हम बच्चों से मिलकर के कितनी खुशी हुई होगी। बाबा को जितनी खुशी है उतनी हमें खुशी है, किसको ज्यादा खुशी है, बाबा को या बच्चों को? क्या कहते हैं सब? हमारे को? हाँ, बाबा को ज्यादा खुशी है, दोनों को भी है, किसी को कम ज्यादा नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए अपने को खुश नसीब समझते हुए, क्योंकि ये संगम की विशेषता है, सतयुग में तो एक ही बाप होता है, कलयुग में दो बाप होते हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक, पर संगम पर तीन बाप होते हैं, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो अगर ये नशा सदैव हमको रहे कि हम तीन बाप के बच्चे हैं, तो आप बताइए कितनी खुशी और कितना नशा हमें रहेगा। इसीलिए कभी भी अपने पार्ट को भुला करके, अपनी पोजीशन को भुला करके नहीं चलना, पर सदैव ये याद रखना कि हमारे तीन बाप हैं, उसमें भी खास हमारे जो दो बाप है, बाप और दादा है, वो हमारे को देखो कहाँ लेके जा रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि साकार बाबा, जिसके द्वारा शिव बाबा ने यज्ञ की स्थापना की, रुद्र ज्ञान यज्ञ, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना बाबा ने ब्रह्मा बाप के द्वारा की। शास्त्रों में भी बताते हैं कि दक्ष प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रचा, तो शिव बाबा ने आके उसके द्वारा जब यज्ञ रचा, यज्ञ में विघ्न तो अनेक प्रकार के असुरों के पड़े, ये भी गायन किया जाता है, परंतु असुरों के यज्ञ नहीं, आसुरी वृत्ति वालों के यज्ञ। हम लोग समझते थे असुर माना कोई सिंह वाले हो गए, कोई बड़े बड़े दांत वाले हो गए, पता नहीं क्या क्या चित्र निकालते थे असुरों के, परंतु अभी मालूम पड़ता है कि आसुरी वृत्ति वालों ने कितने विघ्न डाले। और सिर्फ आसुरी वृत्ति वालों ने डाले ऐसा नहीं, अज्ञानियों ने विघ्न डाले ऐसा नहीं, परंतु ज्ञानी तो आत्मा ने भी कभी कभी विस्मृति में आकर के बाप का सामना किया। उस दिन भी आप मुरली सुनते होंगे कि बच्चे भी कभी कभी बाप का सामना करते। तो साकार बाबा ने ये सारे खेल देखे और सब बातों का बहुत डट करके मुकाबला किया। हर परीक्षा में बाबा खरा उतरा। हम तो थोड़ी बात होगी तो घबरा जाते हैं, परंतु बाबा ने निर्भय होकर के एक बल एक भरोसा, सदैव एक के ऊपर भरोसा रख करके इस यज्ञ के गाड़ी को चलाया और यहां तक लाया। आज भी आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन ये ब्राह्मणों का वृक्ष बढ़ता जा रहा है, और बाबा ने हम बच्चों को बताया है ये वृक्ष इतना बढ़ेगा जितना देवताओं का वृक्ष। तो ये दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है, तूफान भी लगते हैं, आगे भी बढ़ते जाते हैं। इस वृक्ष को जल्दी से जल्दी बढ़ाने के लिए, फर्टाइल करने के लिए ब्रह्मा बाप ने साकार से आकार वतन का सफर जो है उसने किया। क्योंकि शास्त्रों में भी दो बातें बताते हैं, दो वंशावली बताते हैं। एक बताते हैं ब्रह्मा ने मुख वंशावली पैदा किया, और दूसरा बताते हैं ब्रह्मा ने संकल्पों से बच्चे पैदा किए। तो मुख वंशावली जब साकार बाबा था उस समय उसने मुख वंशावली पैदा किया। अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा बाप ने अपने संकल्पों से सृष्टि को रचा, नई सृष्टि को। क्योंकि संकल्पों की स्पीड ये बहुत ज्यादा होती, संकल्प सबसे तीव्र होते हैं। बाबा ने हम बच्चों को जब अव्यक्त बना तभी यही बताया कि आज तुम मुख से किसी को भी बैठ के समझाएंगे, किसकी सेवा करेंगे तो टाइम लगेगा, परंतु संकल्पों से जल्दी पहुंच सके। तो ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को यह भी प्रैक्टिकल में करके बताया कि संकल्पों की वंशावली कितनी फास्ट बढ़ती है। और हम सब ने देखा कि साकार बाबा के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए और अभी जो ब्रह्मा के संकल्पों से पैदा हुए उसमें कितना अंतर है। यहां जरा हाथ ऊपर करो, कौन कौन ना साकार बाबा को किस किस ने देखा है? कोई कोई नहीं, सब ब्रह्मा बाप के संकल्पों की वंशावली एक है, बैठे हुए तो हजारों हैं। तो ये स्थापना का कार्य तीव्र हो, बाबा ने यही हम बच्चों की बुद्धि में बिठाया। आप कुछ समझ सकते हो, क्योंकि प्यारे थे प्यारा, जैसा शिव बाबा है वैसा ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को कम प्यारा नहीं था, और ब्रह्मा बाप को भी बच्चे कम प्यारे नहीं थे। तो बाबा जब साकार से आकार बना तभी की फीलिंग क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। तभी बाबा ने बच्चों को थिमाया और बच्चों को ये रियलाइज कराया कि इस स्थापना के कार्य को तीव्रते तीव्र करने के लिए बाबा ने आकार से साकार से आकारी दुनिया में जाना किया। और पहले भी बाबा हमेशा ब्रह्मा बाप के द्वारा हम बच्चों को ये समझाते थे कि बच्चे तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य है, तुम्हें फरिश्ता बनना है, तुम्हें डबल लाइट बनना है, तुम्हें सूक्ष्म वतन वासी बनना है। पर हमारी बुद्धि कभी भी जाती नहीं थी सूक्ष्म वतन, और जाएगी भी कैसे, हमारे सामने साकार बाबा बैठा हुआ था। तो जब ही यहां ही मिल रहा था तो उधर बुद्धि जाने की बात ही नहीं थी। तो आपको मालूम होगा जब पंछी बच्चों को उड़ना सिखाते हैं ना, उनका ये तरीका होता है, तो वो क्या करते हैं, बच्चे को आप कभी चिड़िया को देखेंगे ना, उसकी माँ कैसा उड़ाती है। चिड़िया का बच्चा छोटा सा होता है, बेचारे को पंख भी नहीं आए होते हैं, तो भी वो उसको चोच मारती रहती है, चोच मारती रहती है। देख के अपने को तरस पड़ता है, इसको लगेगा इसको बेचारे को पंख भी नहीं, और ये इसको चोच मार मार के, चोच मारेगी तो ऐसा ऐसा करता है ना, उड़ना सिखाती है। फिर ऐसा करके 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 धीरे धीरे फिर खुद ऊपर पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाती। फिर जब भी ये ऊपर जाके बैठ जाती है, चू 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 करता है और फिर छलांग मारता है, दो चार बारी गिरता है, परंतु फिर जाके माँ के पास बैठ जाता। तो बाबा ने भी हम बच्चों के साथ यही किया, देखा अभी अगर बाबा साकार में है तो ये तो अव्यक्त वतन का नाम ही नहीं लेते, इधर ही घूम रहे, अभी ये उस लक्ष्य को कैसा प्राप्त करेंगे। इसीलिए क्या किया, हमारा जो प्यारे थे प्यारा ब्रह्मा बाबा था, माँ बड़ी माँ हमारी, उसने साकार को छोड़ के आकारी वतनवासी बन गए। तो उसको देखने के बाद हमारे को मेहनत नहीं करनी पड़ी आकारी वतन में जाने की, जबकि हमारा बाप ही वहां रहता है, तो हम कैसे नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो ये भी एक युक्ति किया, बाबा का बच्चों के साथ अति प्यार था, परंतु बाबा जितना प्यारा था उतना ही न्यारा था। इसीलिए देखो जब भी हम लोग जाते थे सब बाबा के पास आने के बाद किसी की दिल नहीं होती थी जाने की, तो बाबा इतना प्यार देता था, चार दिन रहो या एक दिन रहो तो जब ही जाते थे तो आंसू बहा के जाते थे। और बाबा इतना न्यारा बन जाता था, बात मत पूछो खड़ा हो जाएगा, बोलेगा बच्चे अच्छा खुश रहो, आबाद रहो, ना विसरो ना याद रहो। उनका देखो ना स्लोगन ही कौन सा, खुश भी रहो, आबाद भी रहो, और विसरो भी नहीं और याद भी नहीं रहो। अभी क्या करें बताओ, विसरने का भी नहीं और याद भी नहीं करने का। तो इतना न्यारापन बाबा में क्यों आया, इतना प्यारा होते हुए भी वो न्यारापन इसीलिए आया क्योंकि बाबा अपने देह से न्यारा था। बाबा ने जो शुरू शुरू में मेहनत किया खुद के ऊपर, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, बाबा मम्मा जैसी किसी ने मेहनत नहीं की। बाबा का ब्रिजेंद्र दादी बताती थी, दीवारों पर लिखता था, कापियां भर भर के लिखता था, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, राधा आत्मा है, एक एक के नाम की कापियां लिख डालता था, आत्मा है आत्मा है आत्मा है आत्मा। इतना पक्का किया पाठ अपने साथ, तो सारे घर के जितने भी मेंबर थे उनके नाम से कापियां भरता था, फलाना आत्मा है फलाना आत्मा है फलाना आत्मा। तो वो जो न्यारेपन की बाबा ने प्रैक्टिस किया देह से न्यारा होने की, वो प्रैक्टिस ही बाबा को इस स्टेज तक ले गई। तो इतने बच्चे होते हुए जो बच्चे अति प्रिय बाबा को, परंतु बाबा साथ में रहते हुए भी न्यारा प्यारा होते हुए भी अति न्यारा रहता। इसीलिए आप देखेंगे जिस समय बाबा अव्यक्त बना, सब बच्चे सामने थे पर एक सेकंड में बाबा शरीर से अलग हो, किसी की खींच नहीं हुई बाबा। वैसे भी आप देखो ऋषि मुनि जो है वो इसीलिए तपस्या करते हैं कि अंत के समय हमारे को कोई याद नहीं आ, उसके लिए खास तपस्या कर। तो बाबा की ऐसी तपस्या थी, सब सामने होते हुए, वो तो जंगल में जाके तपस्या करते, ये तो सब सामने होते हुए भी बस एक की लगन में ही मगन, एक सेकंड में चला गया। तभी बच्चों ने बाबा को लेना भेजा, बाबा आपने हमको बताया भी नहीं, आप ऐसे कैसे चले गए, संदेश भेजा जब ही संदेशी के द्वारा, आप ऐसे कैसे चले गए अचानक। क्योंकि लास्ट में बाबा मुरली चला करके रात्रि क्लास करा के दरवाजे में खड़ा रहा, और उस समय बैठ करके बच्चों को वो निराकारी निरंकारी और निर्विकारी का पाठ पक्का कराया, और जाके एक सेकंड में पंछी उड़ करके चला गया। बाबा ने कहा अगर बाबा छुट्टी लेता था तो तुम देते थे, तो तुम जब देने वाले ही नहीं थे तो तुम्हारे से छुट्टी लेने से क्या मतलब। तो इतना न्यारापन बाबा में था, देह से जो न्यारा है वो सबसे न्यारा सहज हो सकता है। और आप देखेंगे कोई भी चीज जो न्यारी होती है वो प्यारी लगती, कोई चीज फंसी हुई होगी तो अच्छी नहीं लगती है, पर न्यारी होगी तो वो प्यारी लगती। तो बाबा का जो अशरीरीपने की प्रैक्टिस थी वो उसी ने बाबा को जल्दी से जल्दी अव्यक्त बना दी। क्योंकि लास्ट लास्ट में हम देखते थे, शुरू में तो जब हम बाबा से मिलते थे बाबा को सारा समाचार भी सुनाते थे सेवाओं का, बाबा बड़ा रुचि से सुनता था, बैठ के पूछता भी था क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। परंतु जैसा जैसा बाबा शरीर से न्यारा होता गया, बाबा ने मेहनत किया खुद के ऊपर बैठ करके, वैसा वैसा सब बातों में से बाबा का इंटरेस्ट कमती होता गया, डिटैच होता गया सब बातों में से, डिटैच इतना डिटैच हो गया जो बाबा के कमरे में हम जाते थे ना तो हमारा मुंह क्या हमारा संकल्प भी बंद हो जाता, विचार करके जाते थे बाबा को ये बात सुनाएंगे बाबा को ये बात सुनाएंगे, अरे वहां जाएंगे तो कोई भी नहीं कुछ भी नहीं, एकदम निरसंकल्प जाके बाबा के सामने बैठ जाए। क्योंकि बाबा तपस्या में ही बैठा रहता था, ऐसे बाबा बैठा रहता था तो हम बच्चे भी बैठ जाते, फिर बाबा पूछता था बच्चे तुमको कुछ कहना है, संकल्प ही नहीं चलते थे। तो ऐसी बाबा ने साकार में अपनी स्थिति को बनाया ये स्थिति बनाने के लिए बाबा ने क्या किया वो भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा। बाबा को जितना निराकार से प्यार था, शिव बाबा से प्यार था, निश्चय था, उतना ही बाबा का ड्रामा के ऊपर भी पक्का निश्चय। कुछ भी हो जाता था बाबा कभी हलचल में नहीं आता था, जो होता है बच्चे बहुत अच्छा हो। यहां तक जिस समय मम्मा ने शरीर छोड़ा, मम्मा अव्यक्त बनी, उस समय भी बाबा एकदम जैसा, इतना मजबूत बाबा की स्थिति थी बात मत पूछ। मम्मा के साथ भी सबका बहुत प्यार था बच्चों, तो सभी भाग भाग के आए। मम्मा जब ही अव्यक्त बनी तभी तो सब जब आए अंतिम संस्कार के लिए, बाबा एकदम ऐसा एक रस स्थिति जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। एक बहन आई, महारथी थी, आई तो उसको बहुत मम्मा के लिए, यज्ञ की पुरानी बहन थी, उसको मम्मा के बहुत याद आ रही थी, रोना आ रहा। बाबा के आगे बैठी, आंख में से आंसू आने लगे। बाबा ने कहा, क्या तुम बाप से परेशानी करने को आई है क्या? कोई मरता है तो जाता है ना परेशानी करने को, जाते हैं कि ये हो गया ऐसा। तो कोई रो के आता था ना, बाबा उसको हंसा देता था, नहीं तो बाबा का सारा यज्ञ का कारोबार मम्मा संभालती थी। परंतु बाबा उस समय भी ऐसा अपने को एक रस बना करके रखा, जो बाबा को देख करके हम बच्चों की स्थिति भी वैसी बनी। अगर बाबा हलचल में आता था तो बच्चे भी हलचल में आ जाते। जिस समय विश्व किशोर भाऊ ने शरीर छोड़ा, एक तरफ तो मम्मा बाबा की राइट हैंड थी, दूसरी तरफ विश्व किशोर भाऊ जो था वो राइट हैंड थी। तो हमको अच्छी तरह से याद है, विश्व किशोर भाई वहां पर आया था, उसको हॉस्पिटल में, बॉम्बे हॉस्पिटल में रखा, हरकिशन दास हॉस्पिटल थी वहां, बॉम्बे में हॉस्पिटल में रखा था। उनका किडनी का ऑपरेशन था, उस समय किडनी के ऑपरेशन बहुत रेयर होते थे और बहुत कठिन होते। तो उसने जिस समय पर शरीर छोड़ा, उस समय भी बाबा एक रस, बाबा में बिल्कुल ही ये नहीं हुआ, ऐसी स्थिति नहीं बनाई। उसके पहले ही जैसा बाबा को मालूम पड़ गया, बाबा ऐसा कमरे में चक्कर लगा रहा था, बाबा ने कहा ये ड्रामा भी क्या चर्या कराया है, मम्मा गई अब ये भी जाता है, अपने साथ ही बातें कर रहा था। और उसकी तबीयत ठीक थी एकदम, और अचानक उसने शरीर छोड़। तो जैसा पहले से ही बाबा को मालूम भी था, परंतु बाबा ने बिल्कुल अपनी स्थिति को एक रस बना करके रख, तो प्यारा भी इतना, न्यारा भी इतना, इसीलिए उसको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई खींच, किसी प्रकार की कोई। और बाबा को निराकार के ऊपर कितना प्यार था, हम देखते थे, हम बॉम्बे से आम लेके आते थे सीजन में, बॉम्बे के आम बहुत मशहूर थे उस समय, तो आम लेके आते थे, बाबा कभी भी मुख में नहीं डालता। बाबा कहता था, बच्ची ये रख दो, क्यों? कल बाबा को भोग लगेगा, पीछे बाबा खाएगा। अरे हम तो बोले शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा एक ही तन में बैठे हैं, अभी ब्रह्मा बाबा ने खाया तो शिव बाबा ने खाया ही खाया। परंतु बाबा कोई भी नया फल जब भी आता था, कभी भी मुख में नहीं डाल। हम लोग तो बाबा को याद करके कभी कभी कोई बच्चे खा भी लेते हैं, चलो ठीक है हमने बाबा को याद किया ना, पूरा हो गया, बाबा को पहुंच गया। परंतु बाबा को इतना प्यार और इतनी श्रद्धा थी बाबा के ऊपर कि नहीं, पहले बाबा को भोग लगाओ, उसके बाद बाबा मुख में डालेगा। तो हमको देखना है कि हमारे अंदर ये विशेषताएं हैं, बाबा के लिए इतना अटूट स्नेह हमारे में है, बाबा ने कितनी परीक्षाएं पास किया। सबसे बड़ी परीक्षा तो बाबा ने बेगरी पाठ जो चला, 350 बच्चे घर में बैठे हैं और खाने के लिए कुछ नहीं है। शास्त्रों में बताते हैं ना, द्रौपदी के देगरे में खुड़खुड़ हो गई, तो वो खुड़खुड़ हो गई, उस समय भी बाबा की स्थिति कितनी टॉप थी। बाबा के मस्तक के ऊपर कभी चिंता की रेखा नहीं थी, क्यों? क्योंकि बाबा को ये पक्का विश्वास था कि ये यज्ञ शिव बाबा का है, बच्चे शिव बाबा का। ये बाबा को फिक्र करें, हम कहते हैं कि हम बाबा को तन मन धन सब कुछ दे दिया है, बाबा को हमने सब चिंताएं फिक्र दे दिया है, परंतु सचमुच कोई बात होती है तो हमको फिक्र होता है, हमको टेंशन होता है। अगर हमको फिक्र होती है तो हमने दिया कहां उसको फिक्र, फिक्र दे के फिर वापस ले लेते के। परंतु ब्रह्मा बाबा एकदम बेफिक्र बादशाह, आप हिस्ट्री हाल में देखेंगे ना, एक पेड़ के ऊपर ऐसा लेटा पड़ा है, एक फोटो है बड़ा अच्छा बाबा का, जैसा विष्णु का बताते हैं चतुर्भुज का, आराम से शेष शैया पर लेटा पड़ा है, वैसा वो पेड़ के ऊपर लेटा पड़ा है, निश्चिंत स्थिति। निश्चय के बिगैर निश्चिंत स्थिति नहीं हो सकती। इतना सारा सिंध हैदराबाद सारी दुनिया का अपोजिशन हुआ, अभी तो देखो किसी को कोई बोलना होगा तो संस्था के लिए बोलेंगे, ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए बोलेंगे, सारी संस्था के लिए। उस समय तो एक के लिए ही बोलते थे, एक ही बाबा था उसके लिए ही बोलते थे, उल्टा सुल्टा जो भी बोलते थे उस एक के लिए ही बोलते थे, परंतु उसको कोई परवाह नहीं, ठीक है जो भी बोले। बाबा के पास एक बारी क्या हुआ, बहुत इन्होंने कोशिश किया गिराने की, ये बहुत बंधन डाले, सब कुछ किया सिंध हैदराबाद में। तो पंच आए बाबा के पास, पहले तो पंच को परमात्मा मानते थे ना, पंच जो हो गए वही पांच जो हो गए व्यक्ति बड़े जिनको मुकरर किया होगा, वो अगर घर में आएंगे आपको कोई भी बात बोलेंगे तो आपको मानना पड़ेगा। तो बाबा तो बहुत सबको, बाबा के लिए रिस्पेक्ट भी बहुत था, तो बाबा के पास वो आए और कहा दादा देखो आप तो कितना अच्छा, बाबा ने उनकी बहुत खातरी किया, बाबा खातरी करने में नंबर वन, बाबा खातरी भी बहुत करता था, फराग दिल भी बहुत, परिकनमी भी बहुत, बाबा वेस्ट नहीं होना चाहिए वो भी बाबा का हमेशा रहता था। तो बोला जिस समय पर आए बाबा के पास वहां और बाबा को बताने लगे, बोला दादा आपका नाम तो बहुत, आप तो देव मानुष है, आप तो बहुत अच्छे है, आप तो दरवेश है, और आप कितना अच्छा गीता का ज्ञान देते हैं, ज्ञान तो बहुत आपका ऊंचा है, पर एक बात थोड़ी सी जो है ना पवित्रता की, वो आप थोड़ी कट कर डालो, बस उसके लिए लोग बिगड़ते हैं, वो निकाल डालो आप उसमें से, और आपका ज्ञान बहुत अच्छा। बाबा ने कहा ये मैं थोड़ा ही देता हूं, ये तो ऊपर वाला आके बोल देता है ज्ञान। तो वो बोलता है काम महाशत्रु है, मैं बोलूं भले विकार में जाऊं, ये मेरे से कभी भी नहीं हो सकता, मैं तो उसका आज्ञाकारी बच्चा हूं, भगवान की आज्ञा तो सिर माथे पर रखनी पड़ेगी ना, तो भगवान की आज्ञा का मैं उल्लंघन कैसा कर सकता हूं, ये तो जो भगवान आके आज्ञा करता है वो आज्ञा सब सुनते हैं, इसीलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, निर्भय, क्योंकि सत्यता सुनाने के लिए निर्भयता जरूर चाहिए, अगर निर्भयता नहीं है तो आप सत्यता नहीं सुना सकते। तो बाबा के अंदर वो निर्भयता थी, उस निर्भयता और सत्यता के आधार पर बाबा ने जो सत्य ज्ञान था उसको प्रत्यक्ष किया अपने जीवन से, अपने जीवन को ऐसा बनाया जिसके कारण बाबा को देख के अनेक उसको देख करके बने दूसरे, दूसरों ने भी फॉलो किया उसको, क्योंकि एक ने जब भी अपना सर्वस्व स्वाह किया तो बाबा को देख के परिवार आए, उन्होंने भी अपना सर्वस्व स्वाह किया। बाबा कहते हैं जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करेंगे, तो बाबा ने कर्म करके बताया, सिर्फ बोल के नहीं बताया, क्योंकि ज्ञानी उसको ही कहा जाता है, कथनी और करनी दोनों एक हो। तो बाबा जो बोलता था वो करके बताता था प्रैक्टिकल, तो ऐसी बाबा की निर्भय स्थिति थी, बाबा की ऐसी निश्चिंत स्थिति थी, कोई भी फिक्र नहीं, करण करावन हार स्वामी आप ही करा रहा। इतनी बड़ी बेगरी पाठ की परीक्षा आई, परंतु बाबा जैसे मम्मा और बाबा, इन्होंने अपनी अवस्था ऐसी एक रस बना के रखी जिसके कारण बच्चों की स्थिति भी हिली नहीं, नहीं तो बच्चे भी हिल जाते थे ना। परंतु ये तो परीक्षा है, परीक्षा आई चली जाएगी। बाबा ने कभी बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया, परंतु परीक्षा तो पूरी ली। हर प्रकार की परीक्षाएं लिया बाबा ने। ब्रह्मा को भी ठोक ठोक करके लिया, ऐसा थोड़ी लिया। ब्रजेंद्रा दादी बताती थी, देखो ऐसा नहीं कि बाबा ने कोई एकदम आके उसमें प्रवेश किया, पहले से उसके अंदर वैराग पैदा करा है। हम लोग बोला घर वाले उसको देख करके, हम बोलते थे क्या हो गया पता नहीं, हम सब सोचते थे आपस में चर्चा करते थे बाबा को क्या हो गया पता नहीं, बाबा इतना रमणीक रीति से सबको हंसाने वाला बहलाने वाला, एकदम बाबा चुप हो गया। बाबा किसी से ज्यादा बात नहीं करता, कुछ नहीं, कभी बनारस चला गया, कभी कहाँ चला गया, जाके एकांत में बैठने का, कभी कोठे के ऊपर चढ़ के जाके बैठ जाएगा। तो जैसा उसके अंदर एक वैराग आने लगा, पहले रथ को तैयार तो करेगा ना आने के लिए, ऐसा थोड़ी आ जाए। तो पहले रथ को तैयार किया उसने, तैयार करके पीछे प्रवेश की, जिसके कारण क्या हुआ, जब रथ पहले से ही तैयार था, वैराग वृत्ति थी जब ही, तभी शिव बाबा ने उसके द्वारा इतना बड़ा कार्य कराया, सबसे एकदम अलिप्त करा दिया। नहीं तो देखो साथ में रहते हुए, सारा परिवार साथ में था ना, परंतु साथ में रहते हुए सब मेरे बच्चे और रिश्तेदार जो भी रहते थे उनको भी यही लगता था ना कि हमारा बाबा है, हम सब बाबा के बच्चे। तो ये भावना पैदा करना, सामने वाला भी समझे कि ये मेरा बाप, युगल भी समझे, पत्नी भी समझा ये मेरा बाप है, अलौकिक बाप, बहू समझे मेरा बाप है, ये क्या है। तो इतनी स्थिति ऊंची होगी तभी तो सामने वाले को वासना आएगी, नहीं तो कैसे वासना आएगी बता। तो बाबा ने प्रैक्टिकल में मर्जी व जन्म क्या होता है ये करके बताया कि किसको कहा जाता है मरना। मैं तो बाबा का बन गया ना, मैं बाबा का बन गया तो सब बाबा के बन गए, नहीं तो मैं बाबा का ये बच्चे मेरे, ऐसा हो जाता। अगर ऐसा होगा तो क्या होता है, नष्टो मोहा नहीं बन सकते। तो बाबा ने नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन करके प्रैक्टिकल में हम बच्चों को बताया कि नष्टो मोहा कहा किसको जाता है, स्मृति स्वरूप कहा किसको जाता है, सारा समय बाबा बाबा और बाबा ही याद, और सदैव ये याद था कि करण करावन हार बाबा। बहुत बारी बाबा जब यज्ञ कारोबार की कोई बात होती थी, बाबा की जो संदेशी थी बाबा उसको बोलता था, जाकर के बाबा से ये बात पूछ के आओ, संदेश दे करके भी पूछवाता था बाबा से, नहीं तो बोले ना मेरे तो तन में बाबा आता है, मैं तो निर्णय ले सकता हूं नहीं, कभी संदेश देके भी पूछवाएगा कि ये इस बात का क्या करना, बाबा से पूछो बाबा क्या बोलता है। देखो जिस समय पर साकार बाबा का निराकार बाबा से इतना प्यार था, जब शुरू शुरू में बाबा को मालूम पड़ा कि शिव बाबा जो है वो नई दुनिया में नहीं आने वाला है, बाबा ने स्पष्ट किया मैं नई दुनिया में नहीं आने वाला, तो कहा तुम नई दुनिया में नहीं आएंगे बाबा, बोला नहीं मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं आऊंगा तो फिर मेरे को पुरानी दुनिया में आना पड़ेगा, बोला आप नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएगा, आप नहीं आएगा ना तो हम भी नहीं आएगा, आप आएगा तो ही हम आएगा, जैसा बालट होता है ना, तो बोला आप आएगा तो ही हम आएगा, आप कृष्ण बनना मैं बलराम बनूंगा, परंतु आपको आना ही पड़ेगा नई दुनिया। फिर तो बाबा ने समझा समझा के पक्का कराया उसको कि नहीं मैं आने से फायदा नहीं है, मैं भी अगर पुनर्जन्म में आ जाऊं तो तुम लोगों को कौन छुड़ाए। तो ये बाबा के ऊपर इतना अटूट स्नेह, और ये बाबा का यज्ञ है, ये बाबा चला रहा है, बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं चलाता हूं, अरे यहां तक बाबा ने कभी ये भी नहीं कहा कि ये मेरा शरीर है। बाबा ने क्या कहा, मैंने ये शिव बाबा को लोन दिया, और शिव बाबा ने क्या कहा, मैंने ये शरीर किराए पर लिया। वो कहता है मेरा नहीं है, शिव बाबा कहता है ये शरीर मेरा नहीं है, ब्रह्मा कहता है ये शरीर मेरा नहीं, वो कहता है मैंने इसको दिया किराए पर, वो कहता है मैं इसको कितना बड़ा किराया देता हूं, विश्व की बादशाही पहले नंबर की देता हूं, ऐसा थोड़े ही आया हूं मैं, मैं फुकट में नहीं लेता इसका शरीर, मैं इसको किराया देता हूं, परंतु ये मेरा शरीर नहीं। तो ये शरीर से अलग होने का, जैसा कि बाबा की ऐसी प्रैक्टिस थी कि ये तन भी शिव बाबा का है, मन भी शिव बाबा का है, ये धन भी शिव बाबा का। बाबा ने जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई कभी पैसे को हाथ नहीं लगाए। कभी बाबा के सामने जाते थे ना यज्ञ के लिए देने के लिए, बाबा ये, बाबा कभी भी हाथ में नहीं लेते। बाबा कहता था ठीक है जाओ सेंटर खोलो, जाओ फलान मकान में लगाओ, ये करो, लेता नहीं, हाथ नहीं लगाता था वो। तो शुरू शुरू में वो ये निकला था, तांबे का पैसा निकला था, आप लोगों को, पुराने लोगों को मालूम होगा, उसमें होल होता था, नहीं निकला था, आप जिसने देखा है हाथ ऊपर करो, होल वाला पैसा बहुतों ने देखा हो। तो होल वाला पैसा निकला तो ब्रिजिंदा दादी थी ना, वो तो थोड़ी रमणीक थी बहुत, तो ये वो ले गई बाबा की परीक्षा लेने के लिए। बाबा को बोला बाबा ऐसा हाथ करो, बाबा ने हाथ किया तो इसने बाबा के हाथ पर वो पैसा रखा। बाबा ने कहा ये वाइशर काय को ले आई, स्ट्रोक किया, ऐसा करके फेंक दिया। तो बोला बाबा ये वाइशर नहीं है, ये पैसा है, गवर्नमेंट ने पैसा निकाला है। बाबा एकदम गंभीर हो गया सुन के। बाबा ने कहा अरे ये पैसा है, गवर्नमेंट के पास, भारत के पास इतना भी तांबा नहीं जो सारा इकट्ठा एक ये बनावे, पैसा बनावे, उसमें भी होल किया है। बोले शिव बाबा ने इतना अकीचार माल दिया, इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरातों के महलों का मालिक बनाया, और इन्होंने खा के इतना खलास कर दिया, उड़ा के इतना खलास कर दिया, जो एक आखा पैसा नहीं बना सकता। तो बाबा हरेक बात में बाबा का ज्ञान भरा हुआ था, क्योंकि ज्ञान सागर के साथ में रह जाके उसके सबका रंग इसके ऊपर चढ़ गया। तो बाबा के एक एक महावाक्य सुनते थे ना, तो उसमें अनुभव होता था कि बाबा कैसा प्यार का सागर है, बाबा कैसा ज्ञान का सागर है, कैसा शांति का सागर है। तो बाबा हम बच्चों को अनुभव कराते, तो इसीलिए हमको संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना है तो ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। बाबा के साथ अपनी कंपेयर करेंगे तो मालूम पड़ जाए कि अभी कितना दूर है हम मंजिल से। अगर साकार बाबा को सामने रख के अगर हम बाबा के साथ अपनी भेंट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि हम अभी तक मंजिल से कितने दूर हैं। बाबा कहता है तुम हमेशा देखो कि बाबा में और तुम बच्चों में कितना अंतर, अपनी जो कमियां हैं वो बाबा के ऊपर भेंट चढ़ाओ। तो बाबा के ऊपर अपनी कमियों को भेंट चढ़ाएंगे तो तुम कंप्लीट बनते जाएंगे। तो इसीलिए बाबा के समान बनने के लिए, निश्चिंत बनने के लिए, न्यारा बनने के लिए, प्यारा बनने के लिए, बाप का प्यारा, सर्व का प्यारा बनने के लिए अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता। जितना जितना हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं, अपने संकल्पों के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर, उतना उतना क्या होता है, हमारे में परिवर्तन आता जाता है। अगर हमारा अटेंशन कम है तो परिवर्तन नहीं आता। हम लोग क्या करते हैं, कोई भूल करेंगे ना, खुद को जल्दी माफ कर डालते हम, हो जाता है ना, क्या करेंगे हम तो पुरुषार्थी है ना, खुद को माफ कर देंगे, और दूसरा कोई भूल करेगा तो उसकी माफ करते रहेंगे हमेशा, इसने इतनी बड़ी भूल किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा। इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये हमेशा बताता है, आप औरों को माफ करना सीखो, खुद को माफ नहीं करो, खुद को माफ नहीं करो, परंतु खुद को काली रूप धारण करके उस कमी कमजोरी को निकालो, कि ये कमी अगर हमारे बाबा में नहीं है तो हमारे में भी नहीं होनी चाहिए। अगर इतना हम स्ट्रिक रहते हैं, खुद के लिए हमेशा स्ट्रिक बनने की जरूरत है, खुद के ऊपर रहम नहीं करो, औरों के ऊपर रहम करो। खुद के ऊपर रहम करना चालू कर देते हैं ना, औरों के ऊपर रहम करना छोड़ देते। तो जैसे बाबा ने खुद के ऊपर इतना अटेंशन दिया, देखो बाबा को तो पक्का था मैं श्री नारायण बनने वाला हूं, तो भी बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया। मम्मा को तो पहले दिन से पक्का था कि मैं श्री लक्ष्मी बनने वाली हूं, फिर मम्मा ने रात रात जाग के योग क्यों किया। हमारे जैसा कोई होगा उसको मालूम पड़ेगा, अरे मैं तो विश्व का महाराजन बनने वाला हूं, हम तो चादर ओढ़ के सो जावे, अरे बनने वाले फिर काय को मेहनत करना, क्या जरूरत है मेहनत करने। परंतु उन्होंने ये नहीं की, उन्होंने मेहनत किया। भले बाबा का रथ था, वृद्ध था, बाबा कहता था अरे बुढ़ा बाबा इतना कर सकते तुम जवान होके नहीं कर सकते, बाबा कभी कभी कहता था ऐसे, अगर बाबा कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते। तो बाबा को इतनी लगन थी। मम्मा को भी जब ये मालूम पड़ा ना कि मैं ही श्री राधा श्री लक्ष्मी बनने वाली हूं, वो मम्मा उस पुरुषार्थ में लग गई कि मैं ही बनने वाली हूं तो मेरे अंदर वो लक्षण होने चाहिए। तभी तो उसको सारे यज्ञ ने मम्मा माना ना, अगर वो पुरुषार्थ नहीं करती थी तो उसको मम्मा कौन मानता। तो ऐसा नहीं मैं हूं बनने ही वाली हूं फिर पुरुषार्थ क्यों करूं। हम लोग ऐसा करते हैं जब बनने वाले तो क्या करने का है पुरुषार्थ, हमारा तो ड्रामा में, अरे ड्रामा ऐसा थोड़े ही बनता है, बिगर मेहनत ड्रामा बनता है, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना, अपना पार्ट नूंद करना है ना, क्योंकि संगम युग ये इस ड्रामा की शूटिंग का समय। अगर शूटिंग के समय एक्टर अपनी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो उसका पार्ट शूट कैसा होगा। तो हमारा जो समय है इसको देखने में नहीं जाना चाहिए, हमें खुद को देखना है। तभी बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन करो, स्वचिंतन करो। आप जितना जितना स्वचिंतन करेंगे, स्वदर्शन करेंगे, उतना उतना स्व परिवर्तन होगा। परचिंतन पतन की क्यों जड़ है, क्योंकि हम जब दूसरों को देखना चालू करते हैं तो खुद को देखना भूल जाते। तो हमारा जो समय है वो कहां जाता है, हमारा समय स्वचिंतन में जाता है या परचिंतन में जाता है, औरों के दर्शन में जाता है। पर दर्शन नहीं करना है, परचिंतन नहीं करना है, मुझे स्वचिंतन करना है, स्वदर्शन करना है, तभी मेरे स्व में परिवर्तन होगा। और मुझे स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करना, क्योंकि जब तक हम अपने में परिवर्तन नहीं करेंगे तो औरों को, परिवर्तन ऐसी चीज है आप समझाने से कोई परिवर्तन नहीं करेगा, करके बताएंगे तभी परिवर्तन। जैसा मम्मा बाबा ने करके बताया तो हम लोगों ने भी क्या किया, उसको फॉलो किया, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बताया शांति का दान तुम मनसा से दे सकते हो, ज्ञान का दान वाणी से दे सकते हो, पर गुणों का दान, शक्तियों का दान तुम कर्म से दे सकते। आज हमारे अंदर समेटने की शक्ति है या सामना करने की शक्ति है, सरकमटेंस आने के बाद अगर हम उस समय अपनी स्थिति को ऐसा श्रेष्ठ रखा, ऊंचा रखा, सामने वाला भी सीखता है कि अरे देखो इन्होंने अपनी स्थिति को इतनी बड़ी परीक्षा में कैसा क्या एक रस बना के रखा, इनके अंदर ये शक्ति, हमको भी ये करना चाहिए। नष्टो मोआ, नष्टो मोआ इन्होंने कैसा बनाया, हमको भी बनाना चाहिए। तो बाबा ने ये प्रैक्टिकल में सब जो भी गुण है वो गुण हमको करके, ईश्वरीय गुण चाहे दैवी गुण, बाबा ने वो धारण करके हमारे सामने पेश किए, जिसके कारण हमें फॉलो करना क्या हो गया, सहज हो गया। अभी हम एक ब्रह्मा नहीं करेगा ना, ब्रह्मा के बच्चे भी तो वही करेंगे। तो अभी सारे विश्व के आगे हम बाबा के बच्चे, जैसे बाबा ने हम बच्चों के आगे एक एग्जाम्पल करके बताया, उसी प्रकार हम सब बच्चों को भी औरों के आगे एग्जाम्पल बन के रहना है। जब औरों के आगे हम एग्जाम्पल बन के रहेंगे तभी हम विश्व का उद्धार कर सकेंगे, उसके बिगर नहीं कर सके। क्योंकि दुनिया में जो भी ज्ञान देते हैं, ज्ञान तो बहुत प्रकार का है, परंतु बन करके कोई नहीं बताते। ये ईश्वरीय ज्ञान की यही खूबी है ना, यहां सिर्फ बोलना नहीं है परंतु बन करके पीछे बताना। इसीलिए बाबा कहता है तुम्हें पढ़ना है, पढ़ के फिर पढ़ाना है। पढ़ने का मतलब क्या होगा, पढ़ने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं, पढ़ना माना अपने जीवन में उतारना। जब हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तभी औरों को पढ़ाना सहज होता। बाबा ने ये सब्जेक्ट दोनों साथ साथ में रखे हैं, पढ़ना और पढ़ाना। नहीं तो और स्कूलों में ऐसा होता है आप डिग्री प्राप्त कर लो उसके बाद पढ़ाने की आपको छुट्टी मिलेगी, यहां ऐसा नहीं है। आपने पढ़ा ना, आप दूसरों को पढ़ते भी रहो औरों को पढ़ाते भी रहो। तो जिससे क्या है, हमारा खुद के ऊपर फुल अटेंशन रहता है कि अभी हम दूसरों को बोल रहे हैं, हम दूसरों को बोलते हैं नष्ट मुआ बनो तो मुझे जरूर बनना ही पड़ेगा, दूसरों को बोलते हैं अलिप्त रहो तो हमको अलिप्त रहना ही पड़ेगा, तो कंपल्सरी हो जाता है ना। तो इसीलिए हम बच्चे जल्दी से जल्दी कंप्लीट बने, बाप समान बने, उसके लिए बाबा ने क्या किया, हमारे को पढ़ना और पढ़ाना साथ में रखा। तो हमें हमेशा ये देखना है जो बात बाबा को पसंद नहीं है वो बात हमको पसंद, बाबा ने क्या किया, बाबा को क्या पसंद है, बाबा को मुरली पसंद, जितना बाबा से प्यार उतना बाबा की मुरली से मेरा प्यार है, पढ़ाई से मेरा प्यार है। बाबा को क्या पसंद है, बाबा को ब्राह्मण परिवार पसंद, बच्चे पसंद है, हमारा ब्राह्मण परिवार से प्यार है। बाबा के साथ तो हमारा प्यार होता है परंतु ब्राह्मणों के साथ कम प्यार होता है, किस किस का नहीं। बाबा ने हम बच्चों को आत्मिक दृष्टि बनाना सिखाया। अरे किसी का भाई या बहन गुम हो जाता है, बहुत समय के बाद मिलता है, क्या खुश होके गले मिलते, अरे मेरा भाई ना कितने मास से मैं बाद मिला है, और हमारे को ये भाई बहन कितने समय के बाद मिले। जैसा बाप 5000 बरस के बाद मिला वैसा परिवार भी तो 5000 बरस के बाद मिला, और कितना सुखदाई परिवार है देखो हमारा ये परिवार कितना सुखदाई है। हर एक को यही है कि हमारा बाबा है, हमारा कार्य है हमको करना। आज आप जाके देखो ये मठ पंथ जो चलाते हैं उनके यहाँ क्या लगा पड़ा है, और अपने पास देखो इतने 25000 लोग बैठे हो गए, कितने में खाना पकता है, कितने में सफाई होती है मालूम भी नहीं पड़ेगा, आप 11 बजे जाओ कुछ भी नहीं, सुनसान होगा। क्यों? क्योंकि हर एक कोई समझता है मेरा है। तो ये जो मेरापन है ना, यही क्या करता है, यही प्यार को पैदा करता है। तो इसीलिए हमारा सबके साथ, ज्ञानी चाहे अज्ञानी, सबके साथ प्यार होना चाहिए, पर विशेष हमारा जो ब्राह्मण परिवार है, हमारे ब्राह्मण परिवार का संगठन जो है ये बड़ा मजबूत होना चाहिए। हमारे कोई कोई बहन भाई बहन है ना ऐसे, उनको कहेंगे भाई तुम कितने बरस हो गए मधुबन में नहीं गए, बहन जी जरूरत नहीं है ना जाने की, क्यों? अभी आजकल तो टीवी में आ जाता है, बाबा को देख लेते हैं, इंटरनेट पर देख लेते हैं, दादियों का क्लास सुन लेते हैं, सबसे मिल लेते हैं। अभी आप अपने रिश्तेदार, मेरे को अच्छी तरह से याद है अव्यक्त बाबा को, एक डॉक्टर थी बॉम्बे की, बाबा ने कहा बच्चे तुम बहुत समय के बाद आई है, बाबा एक एक से बात करते थे ना पहले शुरू शुरू में अव्यक्त बाप दादा बैठ के, बाबा ने कहा बच्चे तुम कितने समय के बाद आई है, तो बोला बाबा 3 बरस हो गए मेरे को। तो बाबा ने कहा 3 बरस हो गई तुम मधुबन में नहीं आई, तो कहा नहीं बाबा, तो बोला क्यों नहीं आई तुम 3 बरस से क्यों नहीं आई है, बोला क्योंकि दादियां वहां आती है ना बंबई में आती है, मैं वहां मिल लेती हूं तो इसीलिए फिर मैं आई नहीं। बाबा ने कहा अभी तुम यहीं रह जाओ, तुम्हारे जो भाई बहन है ना उनको भी यहां रख लेते हैं, घर में नहीं जा उधर जाने की जरूरत नहीं, चलेगा क्या? तो बोला नहीं नहीं वो तो आते रहते हैं ना, बोला तुम्हारे भाई बहन तो आते रहते हैं, फिर यहां ही मिल लेना उन लोगों से। बोला नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा, घर में तो जाना ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ये भी तो घर है ना, तो अभी वो लोग भी तो आते हैं 6-6 मास के बाद आते हैं, 12 मास के बाद आते, जब भी वो आते हैं यहां मिलते हैं तो भी तुम घर में भागती हो ना। तो ये मधुबन क्या है, ब्राह्मणों के एड्रेस क्या है, आप सभी की क्या एड्रेस है? ब्राह्मण माना मधुबन निवासी है ना हम सब, तो जब हमारा घर ही ओरिजिनल घर मधुबन है तो हमारे को मधुबन के लिए इतना प्यार है, इतना स्नेह हमको मधुबन के लिए है, इतनी खींच हमको मधुबन के लिए है कि मेरा ओरिजिनल घर ये है, मेरे को मेरे घर में जाना है। अगर मेरे को यहाँ के लिए प्यार ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर? तो ऐसा नहीं समझना बस हमने देख लिया, टीवी में देख लिया, इधर देख लिया, उधर देख लिया तो बस पार हो गया, ऐसा कोई पार नहीं हो सकता। कोई कोई क्लास में आने का भी आलस करते हैं, अरे तुम अभी क्लास में नहीं आ रहे हैं हाँ हम फिर घर में ही सुन लेते हैं, घर में सुन लेते हैं, यूट्यूब पर सुन लेते हैं, फलाने पर सुन लेते। अभी ये जो भी साधन निकले हैं ये नयों के लिए, बीमारों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए थोड़े ही निकले, तो ये दूसरों के लिए हमारे लिए नहीं है। तो हम देखो पुरुषार्थ को ठंडा करने का काम कर रहे। आपको मालूम होगा स्कूल में भी हमेशा प्रेजेंट मार्क के भी मार्क्स होते हैं, पता है ना आप लोगों, जिसको पता है हाथ ऊपर कर, देखो सबको मालूम। हमेशा जब भी फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, उस समय स्टूडेंट कितने प्रेजेंट लिए रहे उसके ऊपर उनको मार्क्स देते हैं। तो अगर हम घर बैठे ही देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो हमारे मार्क्स क्या हो जाएंगे बताओ, ऐड हो गए या कट होगा? फिर और ही हम वीक हो जाएंगे, पास विथ ऑनर कैसे होंगे? तो इसीलिए हम खुद भी ये अनुभव करते हैं कि जब संगठन में जाते हैं, सबके साथ बैठते हैं, तो उस समय कितनी खुशी होती है। आपको खुशी मिलती है? नहीं मिलती है? मिलती है ना सबको कुछ। हम खुद भी मुरली पढ़ते हैं, परंतु वो पढ़ना और फिर क्लास में पढ़ना या सुनना, इसमें रात दिन का फर्क हो। और जब संगठन में बैठते तब बाबा नई नई पॉइंट्स हमें टच करता है, उसका स्पष्टीकरण बुद्धि में आता है, तो बहुत फर्क होता है। इसीलिए कभी भी मुझे अलबेला नहीं बनना है, क्योंकि हमारे माँ बाप कभी अलबेले नहीं बने हैं, मम्मा बाबा, फिर हम कैसे अलबेले हो सकते? और फिर कैसा कहे कि हम न्यारे भी बने, प्यारे भी बने, बाप समान बने, निश्चिंत बने। निश्चिंत भी तभी रह सकते हैं जब ही हमको पक्का निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, मेरा साथी कौन है, मेरा साजन कौन है। अगर ये मेरे को पक्का निश्चय होगा तो निश्चिंत रहेंगे, वो आप ही कराता है, मेरे को करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे को सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो इसीलिए अपने जीवन को कर दो बाप के हवाले, ऐसा नहीं थोड़ा बाप के हवाले थोड़ा फिर अपना बीच में लगा दी। तो सदैव अगर श्रीमत को सामने रख करके हम चलते हैं, श्रीमत को फॉलो करके चलते हैं, तो बाप समान बनना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है। बाबा को देखो हमारी पढ़ाई का कितना ध्यान है, रोज तो परमधाम से आके हमको पढ़ाया, उसके बाद रिवाइज कोर्स, रियलाइजेशन कोर्स, कितने कोर्स कराते। आज भी हम देखते हैं अव्यक्त बाप दादा आकर के हमारे को बच्चों को पढ़ाता है, रथ कैसा भी होवे परंतु आकर के पढ़ाता है, आके सिखाता है, कितना प्यार देता है बाबा। तो हमें बाबा ने जो परवरिश दिया है उसका रिटर्न करना है, और हमें बाप समान जरूर बनना है, ये पक्का वायदा हम सभी को बाबा के साथ करना है। ओम चंद।
बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। हम में से कई ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टली साकर बाबा की मम्मा की पालना नहीं ली, परंतु अभी दीदी जी का क्लास सुन रहे थे, एक एक शब्द से अनुभव हो रहा था साकर बाबा की और मम्मा की पालना का। उनके रग रग में बाबा मम्मा की पालना भरी हुई है और आज हमें अनुभव भी कराया। दीदी जी के लिए यही शब्द दिल से निकलते हैं, इस संसार में दिल हजारों के मिलते हैं, तूफानों में साइल बड़े मुश्किल से मिलते हैं, यूं तो मिलते हैं दुनिया में लाखों, पर दीदी जी आप जैसे फरिश्ते इस दुनिया में हम जैसे किस्मत वालों को ही मिलते हैं, हम जैसे किस्मत वालों को ही मिलते हैं।
बाबा खड़े हैं बाहे पसारे,
thank you।
पसारे बाबा पुकारे बाहें पसारे मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन खड़े हैं बाहें पसारे।